हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 151। अंबिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वापस देविका की तरफ देखा। देविका काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अंबिका से भी मिशिका की बात छुपाई गई है। अक्षय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। देविका समझ गई और फिर उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। वेदांश अब भी कुछ दूरी पर खड़ा था और वो इस पूरे दृश्य को देख रहा था। उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन वो इस वक्त खुद को उन सब से दूर रखना चाहता था। वो तीनों भाई बहनों को आपस में बात करते हुए देख रहा था, लेकिन वो इतना दूर था कि उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। वो सिर्फ देखकर समझ सकता था कि वे आपस में कुछ बात कर रहे थे। देविका ने अंबिका को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, दीदी, मैं बहुत डर गई थी। आज सुबह बाबा की हालत देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अच्छा हुआ आप आ गईं, हम सबको आपकी ज़रूरत थी। अंबिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं समझती हूँ देवी, और अब मैं यहाँ हूँ और सब ठीक हो जाएगा, बाबा को कुछ नहीं होगा। अक्षय ने एक बार फिर डॉक्टर की बातों को याद किया और अपनी बहनों की तरफ देखते हुए बोला, अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले डॉक्टर ने बताया कि अगर अगले 24 घंटे तक सब ठीक रहा तो वे जल्द ही होश में आ जाएंगे। अंबिका भी अब तक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंबिका ने अपने आंसू पोंछे और अक्षय की तरफ देखा। वेदांश की नज़रें अंबिका पर ही थीं। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर तकलीफ़ में था। वो समझ रहा था कि वो इमोशनल है, बस इसलिए रो रही है। लेकिन फिर भी वो आगे जाकर उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अंबिका की तरफ देखते हुए वेदांश ने अपने आप से कहा, तुम्हारे इन आंसुओं की वजह सबसे ज़्यादा तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी आंखों से बहते हुए इन आंसुओं को देखकर, और इतना बेबस लाचार हूँ मैं, इन आंसुओं को पोंछ भी नहीं सकता। वेदांश ने एक गहरी सांस ली और दूर से ही अंबिका को देखा। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसे पता था कि जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद अंबिका के परिवार वाले और उसका भाई कभी भी उसे माफ नहीं करेंगे, और शायद यही सही था। उसने खुद ही अपने आप को इस जगह पर ला खड़ा किया था। अक्षय ने एक नज़र वेदांश की तरफ डाली, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी इस वक्त उन दोनों के यहाँ पर होने की अहमियत का एहसास हो रहा था। परिवार के इन इमोशनल पलों में वेदांश खुद को वहाँ अनचाहा महसूस कर रहा था, जैसा वो हर जगह ही खुद को महसूस करता था। लेकिन वो फिर भी वहाँ खड़ा था, क्योंकि चाहे जो भी हो वो अंबिका के साथ और सिर्फ उसके लिए वहाँ पर आया था, और वो किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसी बीच कुछ मिनट बाद जब अंबिका ने उस तरफ देखा तो अब वेदांश वहाँ पर नहीं था, जहाँ पर वो कुछ देर पहले तक खड़ा हुआ था। अंबिका इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वेदांश के चारों बॉडीगार्ड अभी भी वहाँ पर ही थे, लेकिन वेदांश उनके बीच नहीं था, ना ही अकेले कहीं पर खड़ा था। वो इधर उधर लगातार नज़र घुमा रही थी, क्योंकि उसे वेदांश नज़र नहीं आ रहा था, तो वो काफ़ी बेचैन महसूस करने लगी थी। अंबिका ने उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ चला गया वेदांश, अभी तो वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, इतनी जल्दी कहाँ चला गया। वैसे मैंने काफ़ी देर से उसे नोटिस नहीं किया था, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी मैं। इतने दिनों बाद मिले अपने भाई बहनों से, तो नॉर्मल है इतना इमोशनल होना, लेकिन फिर भी मुझे वेदांश का ध्यान रखना चाहिए। वो मेरे साथ यहाँ पर आया है, मुझे लेकर, और मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो गई। अंबिका अपने मन में खुद को कोसते हुए ये सारी बातें कह रही थी, और तभी अक्षय ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उधर किसे देख रही हो दी, चलो बाबा से मिलने चलते हैं। अंबिका एकदम से चौंक गई और उसने कहा, नहीं नहीं, किसी को नहीं, और बाबा, उन्हें तो अभी होश नहीं आया है, अभी हम कैसे मिल सकते हैं। अक्षय ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ शायद अभी मिल नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन दूर से तो देख सकते हो ना, आप देख लेना, आप इतने दिनों के बाद यहाँ पर आई हो, कम से कम दूर से ही देख लेना बाबा को, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अंबिका ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। फिर अक्षय वहाँ से डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया उनसे परमिशन लेने के लिए। उसके जाते ही अंबिका एक गहरी सांस लेते हुए बेंच पर बैठ गई। देविका भी उसके बगल में आकर बैठ गई। देविका ने अंबिका की तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा, दीदी कुछ तो बताइए मुझे भी कि क्या चल रहा है ये सब। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इतने दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधेरे में हूँ। अक्षय भाई भी मुझे पूरी बात नहीं बताते, और अब आप आई हैं तो आपकी शादी हो चुकी है। ये मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, साड़ी, इस तरह से तो मैंने आपको इमेजिन भी नहीं किया था। कैसे क्या हुआ कुछ तो बताइए मुझे, क्या इतना भी जानने का हक नहीं है? देविका को इस तरह परेशान होते देखकर अंबिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं देविका, बस इतना समझ लो कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है, और जो होना है होता रहता है, वो होकर ही रहता है, फिर चाहे बहाना कुछ भी हो। देविका इस बात पर कंफ्यूज होकर अंबिका की तरफ देखने लगी, क्योंकि अंबिका ने सीधे तो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक फ़ोन कॉल आने के बाद वेदांश वहां से साइड में चला गया था और दूसरी तरफ वाले कॉरिडोर में गया, जहां पर उसे कार्तिक ने मिलने के लिए बुलाया था। कार्तिक ने ही उसे फ़ोन भी किया था। टू बी कंटिन्यूड। कैसा लगा आज का एपिसोड? क्या बताना चाहता है कार्तिक वेदांश को? और अंबिका की नज़दीकी क्यों तलाश रही है वेदांश को? क्या आज वेदांश को पता चल जाएगा मिशिका के बारे में? और क्या कार्तिक वही बताने वाला है या फिर कुछ और? क्या देविका को पता चलेगी कार्तिक की सच्चाई? सब कुछ पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड में। जब तक एपिसोड पढ़कर कॉमेंट ज़रूर करते रहिए।